चले तो उसमें लग गया।
हमने पूछा, मैंने पहले बताया
বিশ্বনাথের এক তরফ দেওয়া যে স্থানে জিগে অনেকটা
কিন্তু সাধককে নিয়ে উপযোগী নেই, অনেকে তার বিশেষ লক্ষ্য কিন্তু সাধক তো স্থিতি নেয় কর্ম নে কখন অনুবাদন নেই তো কারণ রামকৃষ্ণ প্রমোদ ইয়া পর রামকৃষ্ণ চরণ স্বাস্থ্য প্রমোদ হ্যাঁ
রামকৃষ্ণ
চরণ স্বাস্থ্য প্রমোদ ইয়া পর রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ প্রমোদ গোপিয়া ইয়ে যে কারণ রাম আর কৃষ্ণ কে চরণ কে স্পর্শ সে প্রমোদিত হ্যাঁ গিরিরাজ তো এসা কেউ কারণ দোনো কে লিয়ে কেউ দোনো কো ইসে কারণ মে সাধারণ লোকো কো আপনে ফলো কো নই সমঝানা দেনা চাই ও কেবল কৃষ্ণ কে লিয়ে কারণ কৃষ্ণ তো উনকে বন্দে জি তো উনকে কৃষ্ণ কে বড়ে ভাইয়া হ্যাঁ উনকে প্রতি তো হোনা নেই চাইয়ে কিন্তু উহাঁ পর যে দে রহে হ্যাঁ अपने भाव को छिपाने के लिए भी जो लोग समझे ये राम और कृष्ण दोनों के चरण स्पर्श करके वो कितने आनंदित हो किंतु गोपियों का असल उद्देश्य ये करने का नहीं है। उनका उद्देश्य है राम माने की हसन करमणीय जिनके चरण कमल है जिनके ऐसे कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके वो
जीव गोस्वामी बात राम रमणीय पर रमणती रीति राम राम
इसलिए यहाँ पर राम बलदेव जी का यह तात्पर्य नहीं है बल्कि वो बलदेव जी रहने पर भी उनको देखती नहीं है
स्वरमण
कृष्ण ही देखते हैं। इसलिए वहां पर कहा गया कि ये कृष्ण के जो चरण जो अत्यंत रमणीय है उनका स्पर्श पा करके विराज वर्धन जी अत्यंत आनंद से फल हो जाता है। गागो की कई अनुबंध में है तो उदार कृष्ण एक वन में रहने से काम नहीं चलेगा। कृष्ण एक वन से दूसरे वन में चले जा रहे क्यों जा रहे हैं असंख्य बहुमय है उनके साथ और सखा भी अभिनत सखा है उनके लिए थोड़े से एक निधुवन में या किसी वन में उनके लिए स्थान भरपूर होगा कोटि कोटि का है। इसलिए उनके साधक चलते हैं एक वन को पार करके फिर दूसरे वन में पहुंच जाए अंत तक 9 लाख नंद बाबा की और ऐसे करते एक कोटी गाय भी हो जाए एक कोटी गाय को चरने के लिए एक जगह अंगों में अंग लगा करके चरने में भी कितना चाहिए मिलो जगह के लिए और जब अलग अलग होकर के थोड़ी सी जब चरती होंगी जैसे कि गाय चरती है कि यहां के वहां तो कितनी जगह चाहिए उनके समय तक 16 वर्ष वृंदावन ही एकदम उसमें प्याग कर किंतु एक धाम में विशेषता जैसे भगवान दीदी है उनका धाम दीदी है कभी संख्यानुसार इसे कभी करोड़ों करोड़ों के असंख्य विश्व ब्रह्मांड की जगह ये भूमि कला में भी हो सकती है वृंदावन के और कभी संकुचित कर देते हैं छोटी सी हो जाती है कभी विस्तृत धाम जैसे पुष्पक बीमार उसमें 5 आदमी बैठ सकता है उसमें 1 करोड़ आदमी भी बैठ और फिर वो छोटा भी ऐसे ही ये धाम कृष्ण के समान कभी विभु कभी अणु अणु से भी अणु महियान कभी महियान मणि महान से भी महान
अणुओं की अणियान
इसलिए वृंदावन में ये सब चीजें इसे एक वन से दूसरे वनों में कृष्ण चले जा रहे हैं।
बेनुस बने, कल इसकी व्याख्या में बेनुस बने ही कल्पदयी तनुभित कैसा कर बेनी कैसा बजा रहे हैं कल कलश पदय कल्पदय में नहीं किया क और ल इसके आदि में है और ये मिले हुए हैं तो क्या हो जाएगा
ऐसे बीज मंत्र का योगदान
ऐसे बीज मंत्र का वो योगदान करके वहां के सर्वों श्लोकों को आकर्षित कर रहे और एक कर्म भी होता है कलपदय अस्तुत्स एक स्तूप और एक अस्तुत्स अरे सुनना तो हमारे पास में कौन आएगा जिससे तरफ हम आंख करेंगे ना पर जल सुनना तो सब लोग सुनने लगे हमको बुला रहे हैं हमको बुला रहे हैं हमको अनिर्दिष्ट नाम ले लिया काजा राम सीधा आना तो कौन आएगा इसलिए कृष्ण ने अस्तुत शब्द ऐसा किया जिससे कि वहां पर जितने पशु पक्षी प्राणी के पतंग और जितनी गोपियां हैं सखा हैं जो सुनता है उसी को बुला है उसी में वो सवाल है और कलपद मैंने एक और होता है कल मैंने क्या समस्त स्वर सप्त स्वरों से युक्त मूर्छना इत्यादि मूर्छना और क्या प्रभाव खराब होता है उसमें अवरोह और आधारोह इत्यादि से जैसे ऐसराग में होता है या कारणी में कर्म स्व धीरे 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 करता धीरे धीरे चलता है ऐसा मालूम है जैसे दर्द निकला जा रहा है फिर भी दर्द भर रहा है जैसे कि जहाज से जब कि नीचे उतरते हैं या चलते हैं तो करते हैं तो कैसा होता है ऐसे ही दुखना सब ऐसा बजाते मालूम है सबको प्राणी चलते रहे सबको बुला रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं कल पदयी तनुभित सप्तः अस्पंदन गतिमता अनुकूल इससे अवरोह और आरोह इत्यादि स्वरों से और कल्पत करके जब उनको खींचते हैं ना जैसे कि जब ऊपर में विमान उठता है ना तो क्या होता है मान लो कि ये हृदय नीचे जला जाता है
खाली
को उठा चला जाता है और जब उतरता है तब अन ऊपर में चला जाता है ऐसे ही उस देव के स्वर से सबके हृदय को एकदम मानो प्राणों को ही एकदम खींच रहे इसलिए सभी दौड़ करके आता है ऐसे ही नहीं आ जाते और शरीर में का ऐसा आकर्षण होता है जिसे सब कैसा हो जाता है जो चलने वाले गति में काम जो चलते वाले हैं उनको तो रोक देता है बस चुपचाप एकदम होता है और जो नहीं चलने वाले हैं उनको गतिशील बना देता है मैंने उल्टा धर्म करा देता है कैसे करा देता है अस्पंदनम गतिमता जो गति वाले हैं
अस्पंदनहीन
हो जाते हैं जैसे बछड़ा चल रहा है दौड़ता फिरता है बस ऐसा करते जाते और सुनने लगा कान उसके ऐसे हो जाए और मानो का वो पत्थर की पुतली है ऐसा हो जाए एकदम खराब डूब भी रहा था मैया का स्तन के मुख में पर मुख ही में कान भर में लग गए दूध का फूट वो नीचे नहीं जा रहा ऊपर में नहीं जा रहा वहीं पर घास खा रहा था या घास खा रही है जा बस वहीं काम हो गया एकदम चित्र लिखित पत्थर की मूर्ति है और पक्षी जो है वो पेड़ पर जहां थे जिस रूप में थे बस वही रूप में स्तर कभी कभी कृष्ण बंसी बजा रहे हैं बंसी बजाना आरंभ किया मयूर नाच रहा था पहले मेघ को देकर के तो बस वहीं पर खड़ा हो गया बस ओ हिलना जुलना मानो चित्र बना हुआ है ऐसे ही सब और लगभग तरुण और जो तरुण इत्यादि तरुण ही नहीं यहां पर पेड़ पौधे पत्थर
पत्थर क्या हो गया, पिघलने लग गया, अटक चलने लगा, नदी तो शब्द हो गई, चलने वाली नदी थी वो तो चुपचाप बर्फ जम, जैसे बर्फ जम जाता है वैसे उसकी धारा हो, और जो पत्थर है वो पिघल करके तरल हो गया। वृक्ष, वृक्ष माने फल फूलों से भर करके प्रफुल्लित होकर के पुलकित इत्यादि हो गए, और डालियां झुक गई, माने कृष्ण के चरणों को वो अपने डालों से अपने हाथों से बहा दें। इसी तरह से सभी कुछ बदल बदल हो गया। निर्जाग, ये निर्जाग और पास का ही, और बंसी का और कृष्ण का रूप का ही, मूल में कृष्ण का रूप, कृष्ण तुमने कैसा रूप बनाया, पगड़ी पहना और पगड़ी के ऊपर से निर्जाग लगाया, निर्जाग मैंने निश्चित रूप से या जो निर्जो, निर्जाग निर्जो, निर्जो मैंने क्या निश्चित रूप से अथवा निशेष रूप से जो, वो पगड़ी ऐसी है कि जीव किसी ने देख लिया या किसी भी व्यक्ति ने देख लिया, वो ऐसा कर देगा अब फिर उससे छूटेगा नहीं, सब समय मन में वो रह जाएगी पगड़ी, और सदा के लिए उसे भगवान कृष्ण के साथ मिले सदा के लिए, इसलिए और पास उनको सदा के लिए बांध दिया, जैसे पास से बांधते हैं रस्सी से बांधते, वैसे इस रूप से बांध दिया, जिसने इस रूप को देखा वो साफ किसी तरह से हो गए। लक्षणों विचित्र और विचित्र लक्षण पैदा, कृष्ण के रूप में और कृष्ण की बंसी खाने, सब लोग मुक्त होकर के अपने धर्म को ये बंसी का तात्पर्य क्या, वो ज्ञान चाह रहे हैं जितनी अनर्थों की जड़ है ये बंसी अलग, इसलिए बंसी को जब तक रहेगी हम लोगों को धर्म से हैज से लज्जा से सबसे हमको विचलित कर दे, इसलिए सबसे पहले इन आत्मों की जड़ बंसी को ही हरण कर लेना, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं यदि किसी प्रकार से बंसी मिल जाए तो इसको सबसे पहले हम लोगों को चुराना
गोविंद जिला मुझे एक पाव बंसी पास मैंने ये घर में रहने के वो एक जाता है, इसलिए ये चला गया बहुत अच्छा
है। किसी समय में गोपियों ने शर्त रख दी, आज युवक मन खेला हो रहा है, पास खेला हो रहा है, गोपियां कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो उसमें कभी उनकी जीत कभी उनकी, इस बार काम लगा, इसने कहा जाकर इस बार मैं बंसी का दाव लगा तो इसके ठीक बराबर वाली कोई चीज तुम लोग दाव से लगाओ, तो इसके बाद में क्या दाव हो सकता है, कोई ठीक किसी का रूप दाव लगाओ,
गले गले मुक्त
मुक्ता है, राधा जी का मुक्ता है,
गजा मुक्त है ना,
कोई भी कोई भी कोई चीज तो अच्छा दाव लगा होने लगा, इस बार राधा जी की जीत हो गई, कृष्ण ने डिक्लेयर किया कि ये मेरी जीत, और सब गोपियां मिलकर के राधा जी ने कहा
बड़ा,
तो कृष्ण तो कह रहे हैं मेरी जीत, मेरी जीत थी, फिर गोपियों ने कहा अच्छा ठीक है मधुमंगल जो कर देगा, नहीं हम लोग बात को मान, और मधुमंगलों के सामने लड्डू थोड़ा सा रख दिया, कितना आदर से दिया नहीं, वो जानते थे कि मधुमंगल लड्डू देखते ही
पानी आ जाए
मुख में, और जाता हम चाहे वैसा कहवा दे, और लड्डू को दिखला दिया और इशारे से कहा कि यदि तुमने कह दिया हमारी तो जीत हो गई है, कृष्ण ऐसा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए तुम लड्डू ये सब तुम्हारे लिए समर्पित है यदि तुमने सच की बात करी, बस लड्डू के तरफ देख करके कृष्ण के तरफ में नहीं देखा, यदि कृष्ण के तरफ देखता तो तुम खुद गड़बड़ हो जाता, और लड्डू की तरफ देखता रह गया और कर दिया जैसे गोपियों की जीत को, अब है और बंसी नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती जैसे तैसे उनसे छीन और छीन करके दूसरी दांतों में उनसे लगा दिया। कृष्ण को पता ही नहीं चला, दूसरे प्रकार से वो कानों में लग गए, गांवों में लग गए, घूमते घामते। कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद में किसी ने कहा जैसे हमारी बंसी कहां गई, अब वो उसको गए। जब तुम चंचल हो गए कहा जैसे ये छोटी सी बंसुदिया के लिए बात सेवा एक पाव वो भी सुखी और उसके लिए थोड़ी मूल्य उन्होंने भी छेद पुरानी बांस बांस और उसके लिए इतना तो तुमको नया बांस हम खरीद करके मोटा सा इतना बांस दे देंगे उसका तुम बंसी बना लेना तो बड़ा
बोले तुम्हारा नंदन होकर के
तुम अपने को तो राजा का लड़का कहता है नंदन नंदन और अगर एक सब बांस की लकड़ी के लिए तुम्हारे प्राण जा रहे हैं तरह तरह से उनको अपने आप तक बताया बदलाया था खुल रहा साधक लोग इसी तरह से कृष्ण हमसे बहुत दूर हैं आज तक नहीं मिले। ये सप्तम वाला साधक अथक प्रेम वाला साधक जो है वो करेगा और हम लोग क्या करें है हमारा अनुरक्त नहीं गया। कृष्ण नाम करें और कृष्ण नाम से उसमें राम नाम है हरि नाम है हरे नाम माने राधा नाम उनसे प्रार्थना करेंगे अभी तो हमारे अनुरक्त नहीं गए। हमारी तरह तरह की अभिलाषाएं संसार की है यही नहीं गए अभी हरि नाम में मेरा विश्वास नहीं हुआ अभी काम क्रोध लोग भाग मुंह मार करके नहीं गया और की तो बात मैं बहुत सोता हूं साफ करके बहुत सो जाता हूं इससे हमारे भगवान का भजन ही नहीं हो पाता तो ये भी बहुत खुश हो रहा है मैं क्या करूं इसके लिए हम लोग तो रोएगा कि नहीं जब इसके लिए नहीं होता तो भजन नहीं होगा इसको भी प्रणाम होगा भगवान की यह अनुभूति जो भगवान हमसे बहुत कभी दर्शन तो बहुत दूर की बात वो तो पांचवे या छठे स्तर में उसके प्यार करता है हम तो पास इसके लिए तो हमको होना चाहिए साधु संघ में रहकर भी साधु संघ का जो फल है वो हमारे फल है हमारी तरह तरह के गंदे विचार जो है अभिलाषा है हम चाहते हैं भगवान का भजन कर तो अभी कुछ ऐसे बाहरी कामों में लग जाते हैं तो वो काम नहीं छोड़ते और भक्ति रह जाते कैसे मान लिया कि हम जन्माष्टमी का त्यौहार जन्माष्टमी के त्यौहार में हमारा चित्त कृष्ण में रमना चाहिए जैसे तैसे और उसमें न रह करके मान लिया कि हमने बिजली का डेकोरेशन किया और जाकर के बार बार देखते कैसा डेकोरेशन हुआ और कितने लोग आ रहे हैं बात आज तो हजारों लोग आ रहे हैं आप देखा कि आज हम लोग का परिश्रम आज तो बहुत तरह के चढ़ावे आ रहे हैं बहुत बड़ा देखो तो कितना सुंदर उसने सजा है बस इसमें रह गए इस समय कृष्ण आए तो क्या हो ये बहु आराधना होता है इसी में हम लोग कर आज हम लोग कहीं कुछ पढ़ रहे थे उसमें पारंपरिक एक शब्द है कर्म एक साधन है किंतु पारंपरिक साधन है डायरेक्ट साक्षात साधन है कर्म दो प्रकार के होते हैं वेद विहित कर्म और वेद विहित जो नहीं वेद विहित भी दो प्रकार के कर्म जिसमें एक हिंसा प्रधान होती है जिसमें हिंसा इत्यादि नहीं होता अहिंसा कर्म होता है वेद में भी हिंसा कर्मों का भी जैसे यज्ञ है ये क्या है पशु बलि इत्यादि पशु हिंसा और एक है जिसमें हिंसा इत्यादि वृत्तियां ना हो ऐसी ऐसे भी कुछ वेद विहित कर्म उनमें से हम लोगों के लिए कौन सा कर्म करनी है फिर से आ रहे हैं वो भी कर्म कैसा है? निष्काम। वो भी निष्काम कैसा है? निष्काम कैसा? निष्काम दो प्रकार है, एक ज्ञान की तरफ में मुक्ति की तरफ में चलने वाला और एक होता है भक्ति की तरफ। इसमें से हमको भगवत भक्ति से युक्त रह करके संसारी कामनाओं से रहित भगवान के लिए ये कर्म करना हमारे लिए भी है। और ये भी कर्म कैसे करना है? भक्ति का आच्छादन, ज्ञान कर्म आदि ऐसे कर। इस तरह से जो पशु हिंसा इत्यादि वाले जो कर्म हैं, जो वेद विहित नहीं है या वेद विहित होने पर भी भक्ति के अनुकूल नहीं है, उनको पारंपरिक योग कहा है। नहीं पारंपरिक किस लिए कहा गया? वो करते हैं फिर इसके बाद में ऊपर में आते हैं, फिर ऊपर में आते हैं, फिर जब उनका कर्म भक्ति का उद्देश्य करेगा या जब यथार्थ कर्मण, कर्म जब भक्ति के उद्देश्य से होगा अथवा भगवान के उद्देश्य से साधित होंगे या के ना शेष दिखे
लौकिक
वैदिक ये गीता का नहीं, गीता का जत करोसी जदस नासी जद
जिहोसी
जद तपस्या कम थे तब क्रोश उन सबको मेरे लिए आत्म करना भक्ति नहीं है। किंतु यही परिशिष्ट होने पर भक्तों के साथ में रहने पर जब कर्म का भाव समाप्त हो जाएगा वो भक्ति में बदल जाएगा, तो वो फिर कर्म की भक्ति की जो की परंपरा में आएगा। अभी आएगा इसलिए कह दिया कर्म को जो ये तीनों ये परंपरा, वैसे ज्ञान के लिए भी भक्ति ही एकमात्र ऐसे है जैसे भगवान को पाएगा, ये डायरेक्ट उपाय और बाकी सब पारंपरिक इसको कहते हैं। और थोड़ा सा समझ लो, जैसे हरिनाम हमको करना है, हरिनाम हम पहले सवेरे उठ करके अपना शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करके तब करें। अच्छा, स्नान करना शौच निवृत्त होना ये क्या चीज है? भक्ति है तो क्यों करते हैं? ये पारंपरिक, जब तक हम शौच इत्यादि से मृत होते स्नान करके पवित्र नहीं हुए तो उसके लिए। किंतु यदि कोई स्नान नहीं करता, कटी भी नहीं जाता, हरिनाम करता है तो उसमें बाधा क्या है? किंतु उस स्थिति में रह करके मैं अपवित्र हूं और कर रहा हूं, ये भावना जो लगी है उसमें भावना ये लगी है, इस भक्ति के लिए वो बाधक है। इसलिए इसको करते स्वच्छंद चित्त से शांत चित्त से भगवान का भजन करने के लिए स्नान और शौच निवृत्ति, तो ये ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्नान ही नहीं करते, कहते हैं बेकार काम किया, समय फालतू नहीं है, बस उसको करते नहीं है, बस अपना भगवान इसलिए भक्ति ही मूल चीज है। भक्ति यदि होती है तो उसकी जरूरत नहीं, और भक्ति नहीं होती है तो भी उससे कुछ लाभ नहीं होने का। अब यहां तक तो पूर्व राखी ये बताए, जो हम लोगों को अनुकूल है उसके अनुसार ने बताया। जो प्रारंभ में आरंभिक रूप में हम लोग ये प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ये रोग हमारे लिए बहुत हुए हैं। भक्त ठाकुर ने कहा
संसार
पुकार काने ना पोसी बे देह रोग। प्रभु ऐसे जब मैं नाम करूं, आप प्रार्थना आपसे करता कि संसार की जो बातें हैं वो हमारे काम में न आए, वो बहुत आदमी दुखी है, वो बहुत रोगी है, वो अभी मर रहा है, वो ये हो रहा है, उसके घर में ऐसी विपत्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई ना कोई समस्या है, जरूर समस्या है। किंतु जो शुद्ध भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति है वो चाहेगा कि हमारे कान में ये संसार पुकार कान ना पुष्ट, ये सब चीजें हमारे कान में ना आए, निश्चिंत रूप से भगवान और देह रोग, देह रोग के साथ में भगवान का भजन होना जरा। इसलिए पहले स्थिति में ये प्रार्थना हो शुद्ध भक्तों का संग नहीं मुझे मिलता है। मेरा शरीर मेरे भजन के लिए प्रतिकूल हो रहा है, मुझे नींद आती है, अनर्थ है, अपराध हो रहे हैं। आप आदमी जानता कि यह अपराध है, कभी छोड़ नहीं पा रहा है, कुछ ऐसे कुछ संस्कार हो जानता जानने पर जानता है कि हमको वैष्णव के अनुगत्य में रह करके उनकी हरेक बात को मान करके भगवान का भजन करना जरूरी है, कर पाता है कोशिश पर में नहीं है, इसलिए नहीं कर पाता। इसलिए इन सब मूल्यों के लिए प्रार्थना करना यह भी विपन्न हो गया। ऐसे करते 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 विपन्न बसे धीरे 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 भगवान के लिए पहले भजन में आएगी, जो हमारा भजन नहीं हो रहा है इसके लिए, और इसके बाद में फिर भजन जो कृष्ण है गोप है गोपियां हैं कृष्ण के परिकर उन लोगों के लिए जाएगा जो उनकी सेवा। अब कहते हैं जिनका मिलन हो चुका है और कृष्ण बहुत दूर चले गए हैं, तो फिर बतलाया था जो पहला है पूर्वरा, दूसरा मान, इसके बाद में प्रवास और तब है सुदूर प्रवास, दूसरा है मान साधक में नहीं होगा, ये उन गोपियों में हो सकता है या जो पढ़कर और वैचित्य की भी उन लोगों के लिए संभव है। बहुत दूर कृष्ण जी लगे हैं, बहुत दिन हो गया मिलना, इसमें हम कर सकते हैं कभी उनके साथ में हो सकते हैं, जो कभी बहुत दिनों से वो मिले इसलिए भी प्रलंब गोपियों में है, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कहां से पद्यावली में लरुप कोषा में इसको उद्धृत किया है, माधवेंद्रपुरी वचन माधवेंद्रपुरी वचन ये है कहां का ये कहा है माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुर वाले दीनदयाथ नाथ हे मथुरा नाथ सदावलोक्य से दूर प्रवास राधा भाव के अधिक उपयोगी है, अतः भ्रमक गीति इत्यादि में ये पढ़े राधा भाव उत्साह इसी भाव के शब्द में रह करके दो श्लोक वो अभी करते हैं, दीन दया करना चाहिए मथुरा नाथ करा, और दूसरा हे देव हे दैत हे पुनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक हे नाथ हे रमण हे नयना हा हा प्रदान प्रकाशी पदम अश्वस्थावत में दोष हे नाथ हे पृष्ठ हे उनतालीस अध्याय
पांच दास महावीय दास्यास्त्र त्रिगुणयाम में सभी दर्शन संदेश
देखिए इसमें बहुत सुंदर सब व्याख्याएं हैं। यहां पर गोपियां कर रही श्रीमती राधिका जी कर रहे हैं और माधवेंद्रपुरी पाद जी इसको सब समय चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बहुत ग्रहण करते हैं और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी इस श्लोक का बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत जहां भी प्रलंब का भाव होता था इस श्लोक को और एक करते थे पता कोई पूरी चार जन्म नहीं जन्म ये करते हैं सिरुपदान भोजित भूली सात जन्मनी जन्म ऐ दीन दया करना गोपियां जब कृष्ण द्वारका में चले गए उनके लिए यहां पर रह करके वृंदावन में ब्रज में आंखों को बंद कर रोते रोते कह रहे ऐ दीन दया करना आप तो दिनों के और दया करने वाले समस्त के नाथ जो अत्यंत दीनहीन होकर के रोते रोते आत्र हो जाते हैं, अथवा जिनकी करुण पुकार को सुन करके आप अत्यंत आपका हृदय आत्र हो जाता है, तुम किसी भक्तों की आर्द्र भावना को देख करके आप उसी समय दया करने वाले वो भी आप ही द्रवित हो जाते। जैसे द्रौपदी जी की करुण पुकार को सुन करके उस समय कहां कृष्ण थे, उस समय द्वारका में, और वहीं से करुण पुकार उनकी जब सुनी तो एकदम चित्त चंचल हो गया, आंखों में आंसू भर आए और उनकी रानियों ने पूछा आपकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई। तो आज एक भक्त के ऊपर में बड़ी भीड़ पड़ी है, बहुत दुख है, जल्दी से जाइए। तो यही है, मैं जा नहीं पा रहा, तो जाने में बाधा क्या है, जाने में बाधा कुछ है ये नहीं बता, किंतु बाधा थी क्या, उसका अपना प्रयास, अपने प्रयास से अपनी चेष्टा से अपने दुखों को दूर करने के लिए चेष्टा कर, उसका भरोसा भी दूसरे दूसरे पर है। देखा जाए तो थोड़ी देर में ही नग्न होने वाली है, 60,000 हाथियों के बल से दुशासन उसका खींच रहा है और उसका ये तेज खाइंसता वाले करके सभा में पटक दिया। उस समय कोई चू तक नहीं कहा, भीम उठ रहे हैं मारने के लिए उसको, और युधिष्ठिर महाराज उसको बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, दुर्योधन तमक करके उठते हैं धनुष लेकर के, उनको भी कहते हैं बैठो बैठो बैठो, सबको बैठा दे, अर्जुन को सबको बैठा दे। उस समय मैंने देखा जैसे हमारे अपने लोग कुछ नहीं कर सके और वो हमको लात से मार करके और घसीट कर रही है, ऐसी दुर्दशा आज तक पहले कभी नहीं हुई, आज पहले आंखों से आंसू की तरह। और उस समय और स्थिति पड़ी, कहीं इसको नंगी करके दुर्योधन ने कहा कि हम काल खोकर और यहां पर बैठा दो नंगी कर, और उस समय दांत बाहर करके सपनी करण दुशासन सब फंस रहे। अच्छा ठीक है, हाई का आज्ञा, ये राजा की आज्ञा है, इसको जरूर सुना, राजा तो ईश्वर होता है, बस काल खो। उस समय देखा जैसे वो उठने नहीं दे रहे, भीष्म पितामह की तरफ में देखा, तरफ पिता आज वो लज्जा को हजम कर गए थे, उनको भी कुछ नहीं, द्रोणाचार्य गुरु के तरफ तरफ में देखा, ये सब जो चीजें हमारी रक्षा करेंगे। यहां पर सभा इतनी बैठी है, किसी ने भी चूतक नहीं किया, कैसे बेटम, अब ये सबके तरफ से हताश, अब तक आशा थी, ये आशा के कारण कुछ नहीं आ रहा है।
अच्छा इतने बड़े बड़े सब बैठे हुए हैं, कुछ नहीं जा रहे, क्या बात,
तरह तरह के आदमी हैं, दुष्ट लोग तो आ गए हैं, ये देखेंगे क्या होगा। और जो शिष्ट लेख थे, देखा जैसे जब इतनी ये सब लोग बैठे हुए कुछ नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि डर के मारे चुपचाप, और जिनको शक्ति थी द्रोणाचार्य और विष्णु, उनके लिए कहा गया जैसे नमक खाता था उन लोगों का, उनकी दुर्बुद्धि हो गई, किंतु कुछ बात और नहीं थी, वो तो ज्ञानी थे, जानते थे जैसे भगवान अपनी शरणागतों की रक्षा करते हैं। तो जरा देखें आप जगत देखें, इन्हें युधिष्ठिर महाराज को और इनको भीष्म पितामह को ये जरूर था कि जरूर कृष्ण यहां पर रक्षा करें, इसलिए उन पर यह लांछन लगाना कि उनके खाने से नमक खाने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये ठीक नहीं थी, किंतु ये भी ठीक है दूसरों के लिए, ये ठीक। उस समय मैंने जब देखा कि कोई सहारा नहीं रह गया, कृष्ण छटपट कर रहे हैं आने के लिए, प्रकट होने के लिए, इसके बाद में जब देखा कि सब भरोसा उसका टूट गया, कोई सिपाही नहीं गया, तो कृष्ण के लिए वो कंटित हुआ, बस हे कृष्ण, वो मनी मन में कहे हे कृष्ण अब तो मेरी रक्षा कर, किंतु कृष्ण कभी नहीं आए, क्यों, उसके दांतों में अंचल रखा, दांत से ऐसे पकड़ रखा जैसे समुद्र में अथा समुद्र में अनंत समुद्र में कोई गिर जाए, एक सूखा तिनका देखता है ना तो क्या करता, लपक करके पकड़ ले। अब तो मरी रहा है, वो सोचता कि यदि मैं इसे बच, कुछ तिनके हैं सूखे, एक देखा कि बता हुआ जा रहा है, पर झट उसको पकड़ने के साथ साथ वो भी गया, वो भी गया। अब कोई भरोसा, वो तिड़ जो भरोसा था वो भी, अब उनका जो तिड़ के समान ये जो भरोसा था, ये दांत से हम इसको रखें, किंतु वो तो ऐसा खैचा जैसे अब ये दांत में नहीं होता, दांत से छोड़ दिया, आंख बंद कर दिया, हाथ उठा उठा दिया, अपनी सब सारी शक्ति तक्ति सब छोड़ दिया, ऐसा हाथ उठा देना माने क्या? हम तो शत्रु के हाथ में आत्मसमर्पण करते हैं, और वहां पर किसके लिए हाथ उठाया है? बस कृष्ण के लिए उठाया, बस कृष्ण झट। अब उत्तर देने को समय नहीं मिला, झट एक सेकंड नहीं लगा, और झट आकर के
वस्त्र होता बन गया,
वस्त्र है कि कृष्ण है ये पता नहीं चला, उनकी रक्षा। ऐसे ही जब तक कि हमारा सारा विश्वास जो रक्षा करने वाला है, पालन करने वाला है, हमको देखने वाला सुनने वाला है, ये जब तक दूसरों पर निर्भर है, हमारा बेटा करेगा, हमारा बाप करेगा, मेरी स्त्री करेगी, ये संसार वाले करेंगे, रुपया पैसा करेंगे, तब तक भैया कृष्ण ने इसको समझ। इसलिए ये त्रुटियां किसके अंदर है? हमारे अंदर नहीं है, इस त्रुटियों के लिए प्रार्थना करें। तो कहते हैं कि ऐसे जो दिन हैं, दिन में सभी नहीं, जो कृष्ण के प्रति ऐसी भावना रखते हैं, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दीन नहीं है? उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतो मोर दिना, ये चार प्रकार के आठ अभ्यासी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के जो भजन करते हैं, वो चार प्रकार के लोग भजन नहीं करते, उनमें पूर्व जन्म का संस्कार उनमें यदि
शक्तिशाली हो तो,
और भगवान के प्रति उनकी बुद्धि हो, जो भगवान ही हमको रक्षा, मैं आपको हूं। जैसे थे ग्राह और गज में युद्ध हो रहा, उसने कमल का एक 10,000 वर्षों के युद्ध होने के बाद में जब वह नहीं बापने को बचा सका, तो कमल का एक फूल लिया और देखा जब तो मरी रहा, बस उठा करके सूर्य बचाता, सूर्य से ऐसा ऊपर और कृष्ण के चरण में ये प्राण अपना, और मैं बचूं और न बचूं इसकी चिंता मुझे नहीं, अब तो मैंने ये चरण अपने प्राणों को कृष्ण के चरणों में समर्पित, जो भी समर्पित की थी अपनी आशा भरोसा और लड़ाई युद्ध करना सब छोड़ दिया, अपना कोई भी प्रयास नहीं छोड़ दिया, जैसे द्रौपदी ने छोड़ दिया ना, ये भी छोड़ दिया जो वो ले जाए संपूर्ण, कृष्ण यदि रक्षा करेंगे ठीक है, हम न करेंगे तो भी ठीक है, ये ऊपर ही था, जहां छोड़ा तहां कृष्ण झट आकर के गज और ग्रास समेत दोनों को उठा करके खींच लिया जमीन पर, और जमीन पर लेकर के चक्र से उसका यहां से यहां तक चीर दिया, और उसका पैर एकदम साबुत, वो तो अपना शरीर छोड़ करके दिव्य देवता गंधर्व बन करके निकल करके कृष्ण को प्रणाम करके उठा। और ये हाथी अब इसके पूर्व जन्म की स्मृति आई और उनकी स्तव स्तुति करता हुआ शरीर छोड़ करके ये भी इंद्रदुम्न करके भगवान का भजन करके उसकी साक्षात्कार। ऐसे ही जब तक अपना प्रयास नहीं जाएगा तब वो दिन, तब उस स्थिति में यदि कृष्ण के लिए वो दीनता हो, ऐसे जो दीन व्यक्ति हैं विपत्ति में या जैसे भी हो, भगवान को केवल कृष्ण को ही एकांतिक रूप में और दूसरे का नहीं, गणेश जी भी साथ साथ में है, दुर्गा मैया भी साथ में हमारी रक्षा करने वाली, साथ साथ में हमारा पैसा पॉकेट में गर्म है ये रक्षा करने वाला है, अरे नहीं होगा तो अपनी घड़ी बेच करके हम वहां चले जाए, घड़ी है ना हमारे पास अभी कुछ है, इस तरह से कुछ भी हमारे साथ में अभी जब तक रहेगा, जब तक निष्किंचन नहीं होंगे तब तक भगवान की कृपा होगा। तो इसलिए कहते हैं अई दीन दया, हम तो ऐसे नहीं है, आप तो दिनों के नाच हैं, इसलिए गोपियां वहां पर बड़ी विषाद ग्रस्त होकर के रो रही है। ऐ दीन दयात्र, आप तो उन्हीं के नाच हैं। फिर कहती हैं मथुरा नाथ के, यहां पर उनको कुछ क्षोभ हुआ। पहले तो दीन दयात्रनाथ का, उन दिनों में हम भी हैं, हमारे ऊपर में कृपा करेंगे। तो फिर उनको कुछ उसी में रोते रोते हुए भी कुछ क्षोभ आ, क्षोभ माने क्या, कुछ मान सा उसी में आया। तब उन पर बिगड़ करके कहने लगी, आप दीन दयात्रनाथ जरूर नहीं है, आप क्या है, मथुरा नाथ। मथुरा नाथ माने पूजा, इसलिए मथुरा नाथ। अब आप गोकुल नाथ नहीं गए, दीन दयात्रनाथ नहीं गए, आप दिनों के पुकार से आप आत्र नहीं होते। अब तो मथुरा में बड़े राजा हो गए हैं और राज्य के अधिकारी हो गए हैं, हाथी घोड़े इत्यादि राजाओं के ये सब चिन्हों से आप अलंकृत हो रहे हैं, आप हम लोगों की दुखी बातें कैसे सुनेंगे। इसलिए हे मथुरा कदा बोलो कैसे, आप कब दिखाई पड़ेंगे, अब तो हमें छोड़कर के मथुरा चले गए, पिताजी का नाम भी बदल दिया, मैया का नाम भी बदल दिया, पिताजी आपके हो गए वसुदेव जी, मैया हो गई देवकीरानी, और वृंदावन छूट गया और वहां के मथुरा के नाम बन गए। भजन के अनुपात में दीनता जरूर रहेगी, भजन करेंगे और अहंकार रहेगा वही दीनता स्वभाविक, जितना ही प्रेम ऊंचा चला जाएगा दीनता स्वभाविक रूप में उतनी ऊंची दीनता। भजन अनंत, प्रेम और दीनता दोनों पर्यायवाची, एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा समझना चाहिए। हम लोगों को कभी कभी दीनता के आप बड़े साधु हैं, हम तो कुछ हैं, माने हम क्या करते हैं, हृदय में भावना एक और ऊपर से दूसरा करते हैं। ये दिन यथार्थ में दिन किस लिए दीनता, एक तो हम क्षुद्र जीव हैं, भगवान विधु हैं हम हैं, और ये क्षुद्र होने के नाते हम माया के में बद्ध हो पड़े हैं, और हम समझते हैं कि हम एक एक आदमी जितने आदमी हमारे जैसा और कोई बुद्धिमान नहीं, सभी समझते हैं हमारे जैसा। हाँ कुछ श्लोक याद हो जाता है या कुछ बुद्धि इधर, किंतु मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान, मैं तो किसी का अनुगत्य करता, अनुगत्य में यही चीज बात करते थे, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं जो समझता हूं ये नहीं समझता। एक चीटी हमको काट लेती है, क्यों काटती है, क्यों काटती है बतलाओ, वो अपने को बुद्धिमान समझती है, बुद्धिमान समझ करके काट लेती है, उसका विपरीत भाव होता है नहीं तो नहीं काटती। यदि अनुगत भाव होता ना, एक छोटा सा बच्चा है मैया ने उसको मारा, और वो यदि थोड़ा सा क्रोधित भाव होकर के घर से चला गया, क्यों चला गया, उसका विचार और उसका विचार एक में मिला नहीं, इसलिए उसको छोड़ करके चला गया। और कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो मारा तो रोते रोते मैया के गोद नहीं जाएगा, वो उन्हें हटाती है और फिर ऐसा होना चाहिए। यदि भगवान को दंड देते हैं, गुरु वैष्णव लोग दंड देते हैं, किंतु उनके अस्तित्व और कोई सहारा नहीं, क्या जब भूमि में गिर जाएंगे, भूमि रेवावल भूमि स्थलित बाला नाम भूमि रेवावल, ऐसा यदि हो तब तो होगा भजन। तो इसलिए यहां पर कदा बोलो कैसे, भक्तों में ऐसी भावना आनी चाहिए, मैं बहुत तुच्छ जीव हूं, माया के द्वार में ग्रसित हूं और अपने को मैं बुद्धिमान समझता हूं, योग्य समझता हूं, यह बात है। साधु संघ में रुचि बल नहीं है, बल कौन काम करता है, साधुओं का संघ ही बल करता है। हम लोगों में न कोई ज्ञान है न कुछ है, हमने जो कुछ ज्ञान बुद्धि कर्म
भक्ति जो कुछ भी सीना है कुछ मुझ में हुई है, कहां से आया? दूसरे के प्रभाव से तो आया, नहीं तो हमारे अंदर में एक आदमी को एक बच्चा जन्म लिया और उसको छोड़ दो किसी का आश्रम न मिले तो क्या होगा? उसकी बुद्धि का विकास होगा? बुद्धि का विकास में दूसरों के विचारों को लेकर के अपनी बुद्धि को हम विकसित कर साधु संग रूपी बन, साधु संग नहीं होगा हरिभजन नहीं होगा, यह निश्चित है। कहते ना साधु संग,
साधु संग सर्वशास्त्र
साधु मैंने साधु संग भक्ति का मूल है, साधु संग
कृष्ण
भक्ति जन्म मूल
भय
साधु संग कृष्ण भक्ति का जन्म मूल। जितने हम लोग सिद्धांत में प्रतिष्ठित होंगे, विचारों में प्रतिष्ठित होंगे, साधुओं के प्रति ये भाव आए, संतों के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति, शास्त्र के प्रति ये भाव आए, तो हमें वो बल नहीं है इसलिए हम लोग दीन ही हैं, ऐसा भाव आने चाहिए किंतु नहीं आता। हम सोचते हैं कि हम अपने ऐसे सब कुछ कर रहे हैं इसलिए दीनता का भाव नहीं आता, प्रभु भी प्रसन्न नहीं होते, वो अपने वो कृपा नहीं देते। तो कदा अवलोकन से कब आप मुझे दर्शन देंगे हृदय तद आरोप का करम दैत भ्राम्यति किम करम में हम, हे दई हे प्रिय हे प्राण के प्रियतम, मैं तुम्हें दर्शन न करने के कारण हमारा हृदय भ्राम्यति अस्थिर हो रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, उसी के लिए बतला है किम कृणोमि, क्या
किम कृणोमि
किमी कृणोम कश्य गुणम कथम कथम आकया कथय कथम अन्यान धन्या महोदय मधुर मधुर श्रीराकार मनो नयनो सवय कृपण कृपण कृष्णे कृष्णा चीरंग बतलम देते। मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, किससे कहूं, कौन मेरी बात पर विश्वास करे, इसने भक्तों को ऐसी जब तक उसके लिए विरह न हो, आतुरता न हो, उत्कंठा न हो, ऐसे भावना नहीं हो तो भगवान अपनी कृपा क्यों देंगे? गोपियों को छोड़ करके चले गए इसलिए, इसी चीज को बढ़ाने के लिए जब उनके लिए ऐसा करते हैं संबद्ध जीवन के लिए, इसलिए भजन करते हुए नाम करते हुए ऐसी भावना हृदय ऐसे श्लोकों को पढ़ना चाहिए। हे देव हे दैत हे भुवनई कबंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुण हे नाथ हे रमण हे नयनाथ राम हा हा कदान भक्ता। कहते हैं मां प्रभु जी से प्रार्थना कर काल कली बलिन इंद्रिय वैर वर्ग शिभक्ति मार्ग ही अकंत कपूर हा हा जान विकलम किम अहम करोमी चैतन्य चंद जब यदि हे प्रभु हे करुणा के अवतार हे राधा भाव को लेने वाले और उनकी कांति लेके लेने वाले कृष्ण जो आप बहुत सुंदर थे सती नंदन है हमारे ऊपर में यदि आप आज ही नहीं कृपा करें तो मेरी क्या दशा हो इस पर दस कृपा करें। काल कली आजकल काल कैसा है कली मैंने क्या कलम लाती थी कली बात पर बात में कलम होता है बिना बात आप चले जा रहे हैं एक ठेले वाला वहां पर खड़ा है रास्ते धक्का लग तो आप कहेंगे जैसे तुमने धक्का क्यों मारा और वो कहेगा जी आपने क्यों धक्का मारा और ये तुमने रास्ता पर ये क्यों रखा तो तुम कांख में जो उधर से देकर के चलता बिना बात का बात होकर के झगड़ा होकर के परसों मारा थी और ये सब कली ऐसा ही इस तरह से कली का काल कली बात बात में विवाद सबसे विवाद काला कली बलीन इंद्रिय बैरी वर्ग और हमारी इंद्रिय बड़ी बलवान है
हमारी
इतनी बलवान है
जब जैसा चाहेंगे मन के इच्छा के विपरीत भी उस काम में लगा रहे। सब लोग सब कुछ का मन को कंट्रोल करना बड़ा भारी करते हैं, और ये मन ही कारण बंध का कारण और मोक्ष का कारण, मन एवं मनुष्याणाम
कारण।
ये मन ठीक हो जाता तो भजन भी हो जाए, मन ठीक ही नहीं होता। ये काल के तो इतना, और महा ये इंद्रिय वैरी वर्ग महा है, महाअंत बड़े बड़े उनको बसीभूत नहीं किया। सबसे बेटी ये बोली, बोली के वजह से है लंगड़ी लूली, जैसे कुब्जा थी ना वो कैसी थी,
श्रीवक्रा,
किंतु उसकी जीभ कैसी थी, ऐसे ही इसमें हाड़ नहीं लूली है जीभ, बड़ी तेज है, एक मिनट में न जाने क्या करा देगी, प्रलय करा देगी। लक्ष्मण जी से इस जीभ ने कह दिया, सीता जी की जीभ ने, और कौन हमको चाहता है, राम मर जाए चाहता है, तू राम के लिए बुला रहे हैं तू जाएगा नहीं, तुम अपनी भार्या मुझे बनाना चाहता है, कदापि नहीं होगा, मर जाऊंगी बीज खा लूंगी। अरे ये तो देखो, तो मैं इसके लिए इतना था तो मैया समझता हूँ, और हमारे लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही, अरे जो होगा जो हो, अब तो मैं पर तुमको ऐसा किया, दाग दे दिया, अरे का फेंक दी, और चले। राम ने कहा किया तुमने, सीता कहाँ है, तो सीता तो वहां पर है, क्यों चले आए, तो उन्होंने ऐसा मेरे लिए कहा, तुम तो जानता नहीं ये विवश नारी है, अबला नारी उसको छोड़ करके तुम चले आया, जरूर कुछ अनर्थ हुआ, चलो यहाँ आया तो देखा जी सीता जी, अब डकर डकर कर। लक्ष्मण जी को ये भी नहीं कहते तुम्हारे वजह से ऐसा, किंतु भावना तो है, ये छोड़ करके चला है ऊपर में। ये इतना बड़ा भारी रामायण का जो महाभाग ये हो गया, किसके लिए हुआ, जी पर संतोष हो, अनाप सनात्मक हो, यदि भगवान का भजन करना है, अपनी दिग मत मारो कभी, दिग मारना भी मृत्यु है, दिग मत मारो, दिग क्या मारेगा, तुम जीव छोड़ा कर, एक मन ही को नहीं कंट्रोल कर सकते, इसलिए दिग मत मारो भजन करना है, और जीवा पर कंट्रोल रखो, यदि जीवा पर कंट्रोल रख लिया तो बाकी सब इंद्रिया तुम्हारे अधिक, और यदि बाकी इंद्रिय नहीं यदि हुई इसे क्रोध इत्यादि सब कुछ हम भगवान का भजन भी सुख से कर सकते, यही बड़े दिन, इसलिए इंद्रिय वैरी कर श्री भक्ति मार्ग कंटक कोटि उठता है, कोटि कोटि कंटक, हे प्रभु आज आप दया नहीं करेंगे हमसे, इतना तो चिंता से चाहिए, लेकिन चिंता है इसलिए चिंता के लिए कर रहे हैं, ऐसी चिंता नहीं चाहिए भजन में, तब ये भजन संभव, आज यही चक्र है।
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
नमः।
सप्तम स्तर के साधन भजन के संबंध में चल रहे हैं, कल हम लोग वर्णन कर रहे थे साधक को अनुभूति हो कि हमारे कारणों से ही हम भगवान का दर्शन नहीं पा रहे, इसमें कारण दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं, हम ही इसके लिए कारण, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारा भजन ठीक नहीं है, कुछ विघ्न बाधाएं हैं, एक तो कली का केवल कलह का ये केवल, और दूसरा हमारी चित्त वृत्ति भोगों में रहती है, तरह तरह के अनर्थ हमारे पड़े हैं, इसलिए भगवान का भजन नहीं, और इसीलिए भगवान दर्शन की पहले तो ऋषि मुनियों का भी दर्शन हो जाया करता था, स्वागत रूप सब सुना जाता है। नारद जी आए, कंस से भेंट किया, वसुदेव महाराज से किया, प्रहलाद से मिले, ध्रुव के घर जहाँ पर भजन कर रहा था वहां चले गए। साधु संत लोग उपलब्ध थे, बिना कारण के किसी वो लोग वहां पर चले जाया करते, उनको उपदेश दिया करते, उनको उत्साह देते, भजन में प्रवेश। कभी काल में ये भी संभव नहीं, लोगों को साधु संतों से विरक्ति हो गई है, क्योंकि अधिकांश साधु जितने भी हैं और मुनि कहे जाने वाले भ्रष्ट लोग हो गए। बहुत कम लोग हैं जो सचमुच में भजन करते हैं, सब चीज का व्यवसाय होने लगे। ठाकुर जी की मूर्ति की भी व्यवसाय, भागवत का भी व्यवसाय, कीर्तन का भी व्यवसाय, भजन के लिए नहीं ये सब चीजें। इसलिए लोगों पर किसी पर विश्वास नहीं आया, ये भी भजन कर रहे हैं, सबको एक ही समान समझ। किंतु हाँ अभी भी है, तो सब साधन भजनों का मूल ये है कि कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो, राधा जी के चरणों में, ब्रजवासियों के चरणों में हमारी। यदि ये नहीं है, भजन के द्वारा पैसा उपार्जन करें ये है, या भजन के द्वारा हम संसार में सुखी रहें, हमारा रोग दूर हो जाए, हम बड़े अशांति से हैं, इसे भजन करने से शांति हो जाए, भाई इसके लिए भजन मत करो। जब ये जन्म इस संसार में हुआ है, संसार से दुख को कोई नहीं मिटा देगा, ये कारागार है। कारागार में ये समझेंगे हमको कूलर मिल जाए, खाने के लिए चटरस भोजन मिल जाए, आराम से सोएंगे 9 बजे तक, और बड़े प्रेम के साथ में रहेंगे, तो कारागार में आए क्यों? कारागार इसलिए नहीं है कि आराम से सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और शांति से रहेंगे। वहां जाने पर पुलिस अपने पैरों से, जूतों से ठोकर मारेगा, गाली देगा, ब्लाउज करेगा, लपसी खाने को मिलेगी, चक्की भी चलवाएगा, तरह तरह के दुख होंगे। यहां पर भी इस संसार में हम अपने को समझते हैं जो सुखी हो जाएंगे, ये संसार में रहते हुए कोई भी सुखी नहीं होने देंगे, भगवान की ये माया सबको पीस रही है, किसी न किसी रूप में वो सबको पीसेगी। इसलिए संसार में सुखी वही कोई हो सकता है जे संसार के दुखों को, सुखों को, दोनों को एक समान समझ करके किसी से जरूरत नहीं है, हमको भगवान के भजन करने से जरूरत है, बस यही आपकी दूसरा सुखी। संसार के लोग कहेंगे सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद और क्या मंगलम भवतु, पुरुषों के लिए कहेंगे मंगलम भवतु, और स्त्रियों के लिए क्या कहेंगे
अखंड सौभाग्यवती हो,
सौभाग्यवती। क्या इस जगत में क्या लोग सौभाग्यवती, सौभाग्यवती वही होगा जिसके पति कृष्ण है, जिन्होंने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व बना लेते, नहीं तो आज न कल न वर्ष में न 100 वर्ष में 150 वर्ष में ये सबको जुदा हो जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करना सबके लिए जरूरत, तो ये अनुभव करे भजन करते समय हमारा मन नहीं लग रहा, हमको कितनी विघ्न बाधाएं हैं, क्या हो कितनी विघ्न बाधाएं हैं, आप चले भगवान में मन नहीं लगता। भगवान के लिए बेटा कहीं चला जाता है ना 2 दिन के लिए तो दुख होता है कहां गया, किंतु भगवान इतने दिन नहीं मिले उनके लिए कोई दुख नहीं है। ये भगवान का भजन करते समय ये जब आए, जब भगवान का दर्शन कब होगा, आज तक मिले नहीं, इतने दिन हो गए, कब मिलेंगे, तब इसको करते हैं भजन। और ये है नहीं कोई बैराग्य आया नहीं, इतना दिन भजन किया, कोई बैराग्य ही नहीं आया, तब क्या समझो ये बेकार का दिन भजन। भजन करने का ये संसार से मन उसका थोड़ा सा विरक्त होकर के भगवान के चरणों में, संसार के लिए अधिक चिंता नहीं करेगा, भगवान की सेवा कैसे प्राप्त हो, उनका दर्शन कैसे हो, इसके लिए उसके हृदय में 30 सीट है, इसलिए उसको विरक्त नहीं किया। इसलिए कहते हैं कल ये बताया गोपियां कह रही हैं जैसे विरह में जब कृष्ण मथुरा चले गए तो ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ पदावलोक कैसे हृदय तब आलोक का तरण दैत भ्रांति। प्रत्येक साधक ये समझेगा भगवान के लिए विरह हो कि आप कैसे मिले। अभी हम लोग को यही समझना चाहिए हम ब्रज में हैं, कृष्ण चले गए कहां द्वारका, द्वारका से चले गए मथुरा, अब उनका दर्शन नहीं कर, इसके लिए तर्पण मिलता है। यदि किसी को ये नहीं है बड़े सुख से आराम से खा रहे हैं पी रहे हैं हंस रहे हैं और आराम के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और संसारी को दुखने दुख होने पर भी दिलाने लगते हैं, ये भगवान का भजन का तरीका है। ये सब दुख इसीलिए है कि भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए भगवान को प्रेम के साथ में करना चाहिए, दुख अनुभव करना चाहिए कि भगवान हमको नहीं मिल रहे हैं। इसी चीज को श्रीमद् भागवत से दिखला रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर अहो विधाता विधातक तम कचित दया संयोज्य मैत्रान प्रणयी न देन तंच अपकार्थान वियुनक्ष्य पार्थकम विचेषितम ते अर्भपचेषितम यथा। करें ये प्रसन्न है श्रीमद् भागवत के 39वें अध्याय जिस समय में अक्रूर जी गए हैं ब्रज में, कंस ने उनको प्रोत्साहित किया, कंस ने अक्रूर से कहा आप हमारे चचा जी हैं आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। ये जो कृष्ण और बलदेव जो हैं हमको ऐसा पता चला है कि ये वसुदेव जी के लड़के हैं और देव जी यही आठवें गर्भ का ये लड़का है और किसी प्रकार से छल बल करके ये चला गया वहां ब्रज में और वहां पर पाला पालित पोषित हुआ, उसी के हाथ से हमारी मृत्यु लिखी है, तुम हमको बचाओ मेरी सहायता। मैंने कहा जैसे जरूर आपकी रक्त हम सेवा करेंगे, आप जो कहिए मैं करूंगा, तुम्हें एक बात करो और किसी पर हमारा भरोसा नहीं है, आप वृद्ध हो गए हैं बड़े बुद्धिमान हैं और हमारे शुभ चिंतक हैं, मैंने सदैव आप पर भरोसा किया, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप चले जाइए ब्रज में और वहां जाकर के जो कृष्ण और बलदेव हैं चतुराई के साथ में कल यहां पर ले आइए मथुरा में। अभी हम लोग यहां पर हैं इसको कहते हैं कंस टीला है, यहीं पर अखाड़ा था उसका, अखाड़ा तो था भूतेश्वर में किंतु यहां पर प्रशस्त जमीन यमुना के किनारे पड़ी हुई थी, पासी में यमुना बह रही और यहां पर विशाल जगह थी, इस जगह में यहां पर ऊंचा एक बनाया गया रंगशाला। रंगशाला कहते हैं कि यहीं पर कोई महोत्सव होगा, कुश्ती होगी, दंगल होगा, लोग सब आएंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि कृष्ण को कैसे मारा जाए, अकेला जो कोई असुर उनको मारने के लिए जाता है ब्रज में वो लौटता नहीं है, खबर देने के लिए भी नहीं आता ये क्या किया, इसलिए यहीं पर बुला करके सभी लोग मिल करके उसको मारेंगे, इसलिए तुम जाओ और नंद बाबा से कहो और उनके बच्चों से जो कल यहां शंकर जी यहां पर है रंगेश्वर महादेव उनके उपलक्ष्य में सेवा के उपलक्ष्य में यहां पर दंगल होगा और उनकी पूजा हो, इसलिए तुमको उन्हीं के बहाने में बुला यहां पर आकर के हम लोग व्यवस्था करेंगे। अक्रूर जी गए कभी आप तुम्हारे मरने में अब देरी नहीं, सांप एक पड़ा हुआ था और तुमने लेकर के उस सांप को
गले में लपेट दिया
और उसको छेड़ दिया तो वो सांप क्या करेगा और काटेगा तो यहां और बचेगा नहीं,
तुम जगह में सड़कों जो दूर में खेल रहा था उसको तुमने बुला करके और अपने गले में उसको धारण कर लिया, अब तो तुम्हारा मरना नहीं। ये सोच करके जब ठीक है तब तुम मरने ही पर लगे हो तो मैं क्या करूंगा, तुम तो मैं नहीं जाऊंगा दूसरा कोई जाएगा। तो हमारा यह सौभाग्य है कि कृष्ण और बलराम जो ईश्वर हैं हमारे आराध्य हैं, उनका दर्शन तो वहां जाने से नहीं जाए। और ये सौभाग्य हमको मिलेगा, लोग कहेंगे जो आपको भी ले आए और तब ये कंस का निधन हुआ, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। ऐसा सोच करके उसके कहने से वहां जाकर के नंद बाबा से मिले और नंद बाबा से मिल करके नंद बाबा ने उनकी सारी व्यवस्था की। बलदेव जी उनसे मिले, बलदेव जी ने बड़ा आतिथ्य किया। उस समय तब बड़े हो गए हैं ना, कुछ बड़े हो गए, अब समझदार लोग हो गए, इसलिए इनको बैठाया। ये इनके हाथ जोड़ करके इनके लगते हैं कुछ चाचा जी लगते हैं, इनके चाचा जी लगते हैं, किंतु फिर भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। और बलदेव जी ने इनका हाथ दोनों पकड़ करके अभिवादन करके इनको बैठाया, बड़े अच्छी तरह से बातचीत किया और इनके पैर दबवाए और खिलाया पिलाया। जब ये सब हो गया तो नंद बाबा भी उनसे थोड़ी सी बात किए, इसके बाद में नंद बाबा जी चले गए सोने के लिए, अब कल बातचीत कर। और ये दोनों बच्चों को एकांत में पा करके और उनसे बातचीत कर करेंगे। देखो तुम्हारे मैया बाप को पहचानते हो, मैया बाप नंद जी हैं और यशोदा जी हैं, नहीं ये भूल जाना, तुम्हारे मैया बाप हैं वसुदेव जी और देवकी, और तुम्हारे लिए जेलखाने में उनको बंद किया और इतना कष्ट दे रहा है। इस विषय को सब लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं कि विशेष, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया, उनके सब लड़के तुम्हारे भाइयों को मार डाला और उनको अभी तक जेल में बंद रखा है और उनको मार डालने की रोज धमकी देता है। यदि कल तुम नहीं गए तो कल समझ लो जो उनका अंतिम दिन है उसको खत्म। अब तुम लोग समर्थ हो, आप जगत के ईश्वर, आप इच्छा करने से वो कंस मारेगा, मैं जानता हूं इस बात, इसलिए आप लोग चल करके कल ही कंस का वध कर। ऐसी सब रात भर प्रलोचना देते रहे और ऐसी बात कहते रहे जिसे कि इनको क्रोध हो जाए। बलदेव जी को और कृष्ण को सचमुच में हमारे भले ही पिता माता न हो, किंतु बलदेव जी के तो पिता माता हैं और उनको इतना कष्ट देता है। बलदेव जी हमारे सखा हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए हमको जरूर चलना चाहिए। दोनों भाई चले रात में स्थिर हो, सवेरे नंद बाबा जी इनकी बातों को सुनकर के घोषणा कर ब्रज में चारों तरफ में सोच हो गया कि अब आज ही सवेरे में कृष्ण और बलदेव को लेकर के अपूर्व भी जाएंगे, नंद बाबा भी अपने साथियों को लेकर के वहां पर जाएंगे और फिर वहीं पर रंगशाला देखेंगे और अपना वार्षिक कर भी दे आएंगे और लेकर के लो। गोपियों को मालूम हुआ वो कृष्ण में जिसका जितना अधिक प्रेम है उतना ही उनके लिए दुखी होगा। इन लोगों को भी दुख है जो कृष्ण जा रहे हैं, किंतु किसी ने अनुमान ये नहीं किया कि कृष्ण वहीं पर आ सकते हैं, किंतु गोपियों ने अनुमान किया। इन बूढ़ों की अकल खराब हो गई, इतने बूढ़े हैं कोई भी मना नहीं करता, और जो नंद बाबा इत्यादि हैं जो बूढ़े अभी नहीं हुए हैं ये लोग भी जाने के लिए तैयार देखते हैं, सखा भी इनके साथ में जाने के लिए तैयार है। इनको ये पता नहीं कि हो सकता है हम तो गवारू लड़कियां हैं और वहां पर बड़ी शिक्षित पढ़ी लिखी बुद्धिमान और सब प्रकार से रूपवती सार श्रृंगार करने में थे, वहां की जो लड़कियां होंगी ये इनसे मिले मिल करके उनके बच्चे हो जाए। इस तरह फिर लौटेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं, इसलिए बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने यशोदा जी को बहुत से उलाहना दिए, जब देखा जब कोई नहीं उनको मना कर रहा तो खुद ही ये वहां से चली और कृष्ण से ये बोलने के लिए तैयारी, जैसे ये तो नहीं कहेंगे, एक कोई कह रही है सखी देखो हम लोग अभी जाएंगे तो यह बात छिपी हुई थी कि हम लोग उनको प्रेम करते हैं कृष्ण, अब तो सभी लोग जान जाएंगे ये सौनिया वो इतना प्रेम है कि ये जा रही थी ये रो रही और इनको जाने नहीं देती, तो ये बात व्यक्त हो जाएगी। दूसरे का तो व्यक्त हो जाएगी तो करके क्या हमारा क्या जाएगा, वैसे तो हमको यदि चले जाएंगे तो वैसे ही तो मर जाना है, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो बात व्यक्त हो और न हो, या तो ये रह जाएंगे तो हम लोग तो जीवित रहेंगे और यदि चले गए तो हम लोग मर ही जाएंगे, तो फिर कहने सुनने वाला कोई रह नहीं जाएगा और यदि आ रहेंगे तो हम लोगों का हम लोग जीवित रहेंगे। इसलिए किसी भी हालत में हम लोग चल करके यदि नहीं मानते हैं हाथ पकड़ कर हाथ पकड़ लेंगे नहीं जाने देंगे, उनके कपड़े पकड़ लेंगे नहीं जाने देंगे, रथ को भी नहीं जाने देंगे, जैसे तैसे उनको हम मना कर देंगे। उसी समय में ये कह रही है मनी मन में भूखिया पर कह रही है अहो विधाता विधातक कवन अपचित गया, हे विधाता तुमको कहीं दया नहीं, क्यों विधाता को क्यों कर रही है, जिसने हम लोगों को मिलाया वही जो मिलाया वही अब हम लोगों को अलग कर रहा है, इसलिए दूसरा इसमें कोई दाई नहीं है, दूसरे किसी का हाथ नहीं, हम लोगों का ऐसा ही है भगवान की इच्छा से या काल के प्रभाव से हम एक साथ परिवार में 10 20 25 आदमी एकत्रित रहते हैं और फिर काल के प्रभाव से फिर हम लोग अलग 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 रहते हैं। अभी बंगाल में या पाकिस्तान में हिंदुस्तान पाकिस्तान परिवार के परिवार कितने मर गए कितने बिछुड़ गए जो अभी आज तक परस्पर नहीं मिले, ऐसे ही जो आदमी मर जाता है फिर हम लोगों के परिवार में फिर आकर के फिर मिलेगा कोई गारंटी है, कोई कुछ नहीं। जैसे कि नदी में बाढ़ आती है और एक जगह का मिट्टी कट फट करके और एक जगह टापू बन जाता है और फिर वही कट करके न जाने कहां कहां चला जाता है। अभी बंगाल में एक बाढ़ है, एक स्कूल में बहुत से लोग कोई उत्सव हो रहा था एकत्रित हुए 400-500 लोग थे, वो वहीं पर रह करके और उत्सव मना रहे थे, इतने में ही कितनी बड़ी जोर से बाढ़ आई घिर गए, पानी बढ़ने लगा तो छत पर सभी लोग चले गए 400-500 बाद और वो बाढ़ इतनी भयंकर हुई घर को गिरा करके छत समेत बह चला। जब बाढ़ चला ना अब सब लोग त्राही त्राही करने लगे, उसमें एक आदमी भी एक आदमी से मिला फिर न जाने कहां 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 सब चले गए, कोई मर गए कहां गए कहां। इसी तरह से ये संचार चक्र है, इसको करने वाला कौन है, इसलिए दूसरा कोई नहीं है, या तो हमारा अपना कर्म है इसी को कहते हैं काल। तो ये काल के द्वारा ये कभी कभी मिलते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। गोपी ने सोचा अभी कल हम लोग मिले और आज हम लोग बिछुड़ रहे हैं, इसमें किसका दोष है, हम लोग को चाहते हुए भी नहीं अलग अलग हो रहे हैं, हम लोग मिलना भी नहीं चाहते थे किंतु भगवान की इच्छा से काल की इच्छा से हम लोग मिल गए, इसीलिए कह रहे हैं अहो विधाता आप उस संसार की रचना करने वाले हैं, आप ही संसार को नियमित करते हैं, आपको तनिक दया नहीं है, तनिक भी दया नहीं। संयोज मित्रा प्रणय न दे, इन देवियों को आपने मित्रता के द्वारा और प्रणय के द्वारा, यहां पर मित्रा माने सख्य, सख्य भाव, हम लोग को सखियों के रूप में और सखा के रूप में हमको आपसे मिलाया। और प्रणय न, प्रणय के द्वारा और भी जोड़ दिया है, दोनों के प्राण एक कर दिए प्रणय न। और मिलने के बाद में हम लोग अभी अकृतार्थ रहे, अकृतार्थान अकृत अर्थ अर्थात मिलने में क्या होगा, प्रेम से रहेंगे ना, परस्पर परस्पर को प्रेम करके उसमें सुख का अनुभूति करेंगे। ये आपने होने नहीं दिया पूरा, उसके पहले ही क्या कर दिया, पीयू नक्ष पार्थकम, अलग अलग कर दिया हम दोनों को, कृष्ण को हमसे छीन लिया। और अपार्थकम, अपार्थकम मैंने क्या, अप अर्थकम, पार्थकम मैंने अलग करना नहीं, अप
अर्थकम,
अर्थकम अर्थ को काट दिया। मेरी जो अभिलाषा थी, हम लोगों की अभिलाषा थी,
प्रयोजन
जो था, क्या प्रयोजन था, हम लोग मिलकर के परस्पर सुखी रहेंगे, यही हमारा प्रयोजन था। तो ये प्रयोजन को ही आपने नष्ट कर दिया। आपकी चेष्टा ने ही सब कुछ व्यर्थ कर दिया। कैसे, यदि किसी को पता हो ये विधाता, विधाता मैंने यहां पर ब्रह्मा, ऐसा ही करता है, ऐसे ही मिला करके फिर वियुक्त कर देता है और इच्छा पूर्ण नहीं होने देता, प्रयोजन सिद्धि नहीं होने देता, तो कोई प्रीति करेगा तो संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा। प्रभात चरित्र में जहां पर हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसके बाद में उसकी स्त्रियां जो रो रही हैं, तो वो ऐसे ही रो रही हैं और कह रहे हैं आपने ये क्या किया, मूर्ख जैसी बातें आपने क्यों की। अभी ये छोटा सा बच्चा वो थे और हमको उनसे अलग कर दिया, वो मर गए, हम अलग हो गए। यदि आपकी यही रीति है तो लोग समझेंगे कि हमारा बेटा भी चला जाएगा, पति चला जाएगा, तो किसी के साथ में कोई प्रेम नहीं करेगा, तो ये आपका संसार नष्ट हो जाएगा, ये आपको पता नहीं। किंतु आपको ये ज्ञान नहीं, इसलिए आपकी चेष्टाएं हैं मूर्खों की भांति या बालक की भांति, बाल चेष्टा मात्र, आपका संसार ऐसी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर ये भी कह रही है कि हम लोगों का जो प्रयोजन था मिलाया आपने, मिलाने के बाद में विचेषितम, आपकी ये जो चेष्टा है संसार की रचना करते हैं, उनसे किसी को मिलाते हैं और मिला करके अभी अतृप्त अवस्था में उनको अलग अलग कर देते हैं, ये आपकी चेष्टा है। अर्भम चेष्टितम, बाल चेष्टा है, इसे तो संसार सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को देखकर के ये करेंगे, क्यों, भविष्य के लिए, ये हमको छोड़ करके चले जाएंगे, फिर वहां से लौट करके नहीं आएंगे, इसलिए ये ऐसे ही साधक क्या करेगा, साधक इसके द्वारा सीखेगा। इनके पीछे वाला जो वियोग है, ऐसा ही वियोग हम लोगों के अंदर भी हो, भगवान के लिए ऐसी तीव्र वियोग हो, और भजन यदि करें तो भगवान पाए जा सकते हैं, अन्यथा भगवान ऐसे नहीं पाए जा सकते।
जस्यानुराग ललित स्मित भगवंत लीलावलोक परिगम गोस्त्या निदात्मा खननीय खनदा विनाशम।
जस्यानुराग ललित स्मित बलुहास जस्यानुराग ललित स्मित बलु मंत्र अंश में ये कह रहे हैं जस्यानुराग कृष्ण का हमारे प्रति उनका यह स्मरण होने लगा, राज का प्रसंग उनके आंखों में फूट पड़ा और वो चिंता करने लगे। जस्य अनुराग ललित स्मित, राज के समय में कृष्ण का हमारे प्रति ऐसा अनुराग कि अनुराग के द्वारा बंसी के द्वारा हमको बुलाया अपने पास, और उस समय उनकी जो कथाएं थी बातें थी ऐसे प्रेम भरी थी कि तुम लोग घरों को लौट जाओ। वो मंद मुस्कान के साथ में कह रहे हैं जिसका द्वारथक है वो भी यहां समझ ना सकी। द्वारथक माने जाएं कि ना जाएं ये ठीक से नहीं करें, करेंगे जाओ किंतु हस्तक के क्यों कर रहे हैं और हमारे तरफ में इस प्रकार से देख करके क्यों कर रहे हैं। इसलिए वो समझ नहीं सकी कि इनका मतलब क्या है। इसलिए बहुत कृष्ण बहुत कुछ कहे तब तक वो प्रतीक्षा करके देखती रही। कभी नहीं आया ना तो गोपियां ही परीक्षा कृष्ण को करने लगी, अच्छा तो देखे जी इनका मतलब क्या है, तब फिर उन्होंने कहा। तो यहां पर वो कह रहे हैं जस्य अनुराग ललित स्मित, जिनका अनुराग ललित स्मित राज के समय में, ललित स्मित माने ललित माने मनोहर, मनोहर ललित एक और भी है जहां मुखों की मुख का चारुता हो, मंद मुस्कान हो, आंखों में कुछ भाव हो और प्रत्येक अंगों की कोमलता को उसके द्वारा व्यक्त किया है तब इसको ललित कहा। ललित का ये मुख की चारुता हो, अतंत मुख की भंगी बड़ी सुंदर, अंग भी खूब कोमल हो और अंगों से भी कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जिसके अंदर में कुछ भावना है, आंखें भी मानो कुछ कह रही हैं, भौहें कुछ कह रही हैं और देखने वाले को सबको आकर्षित कर रहे हैं, उनका प्रत्येक चीज बड़ा मनोहर सुंदर, तो इसको कहते हैं ललित। इसीलिए ललित त्रिभंगी भी है, ललित चावनी है, ललित उनका सब कुछ है। उसमें ललित स्मित, स्मित माने मंदहास्य, बल्गु मंत्र, बल्गु मंत्र माने बल्गु माने भी परम सुंदर मोहन और मंत्र माने क्या बातें वार्तालाप परस्पर इतना मनोहर जो हम लोगों को आकृष्ट करते। क्यों आई है रात में, क्यों आई, आने का मतलब क्या, तो जब कुछ नहीं बोली तो जब पूर्णिमा का चांद देखने के लिए आई, नदी देखने को आई तो अभी कुछ नहीं बोली, पुष्प चयन करने के लिए यहां पर आ गई, इस तरह से बातें कर रहे हैं। और भी 32वें अध्याय में गोपियों से आकर गोपियां भी प्रत्युत्तर कर रही हैं, आपका प्रेम कैसा है, बनियागिरी का आपका प्रेम है कि कैसा प्रेम है, साधु प्रेम है, आपने जो प्रेम करता है उसके बदले में प्रेम करते हैं, जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, आप कुछ चाहे प्रेम करो ना करो कभी नहीं, आप इसमें से कौन है। कृष्ण ने कहा जैसे मैं इनमें से कोई नहीं हूं किंतु किसी न किसी में है, ये सब चीजें उनमें है, जो प्रेम नहीं करता उसको करते हैं कि नहीं, तो करते हैं, जो करे ना करे वो सबको भी प्रेम करते हैं, ऐसा भी है, यही उन्होंने अंत में दिखलाया। तो इस प्रकार से बल्गु मंत्र इसको कहते हैं, अपने बातों के द्वारा प्रेम भरी बातों से जो दूसरों को आकर्षित कर लेता है, आपने वो आकर्षित हम लोगों को किया, लीला बोलो, लीला पूर्वक हमारे तरफ में देखना, परिगम्भन, परिगम्भन में हाथों में हाथ लगा करके नृत्य करना इत्यादि सब। राष्ट्र गोष्ठियां, राष्ट्र की गोष्ठी में ये सब आपने किया। उस समय हम लोग नीताश्व न खननी व खनदा बिना, उस समय में ये खनदा, खनदा माने, खनदा माने उत्सव देने वाली जो रात थी, खनदा माने वह रात जिसमें आनंद दे, यह रास का की रात जो थी वो खनदा थी। किंतु वो तो खनदा थी खनमिव, खन नहीं मात्र में ही ब्रह्मा की एक रात लाखों वर्ष। इसी तरह से गोपियों को मालूम नहीं हुआ क्षण भर में ही अब वही खनदा जो आने वाली है आज के बाद में, आज की रात। खनदा माने जो अब चली गई क्षण में, अब वो खनदा उत्सव रहित हो गई और वही रात को अब हम आपके बिना, तांग तंग बिना, आपके बिना हम कैसे काटाएं। ये चिंता करते करते वो आकुल हो गए। भक्त कथम नति करें तमो दुरंत, आपका विवाह रूपी जो अंधकार है, घोर अंधकार, ये घोर रात अब खन ही एक कल्प के समान हो गया। उस रात को अब आप कैसे बिताएंगे आपके बिना, कथम अब अपनाओ। इस प्रकार से अत्यंत विरह में इसी प्रकार से भक्त को ऐसी भावना होगी, ये सब कब मिलेंगे। एक क्षण भी कल्प के समान जब बीतने लगा था, जैसे कि बिंद मंगल इत्यादि को, हमारे गोस्वामी लोगों को ऐसा करते, ऐसे किसी दशा में होगी उसी समय में भगवत दर्शन संभव है, इसके पहले नहीं। अंततः दुख तो होना चाहिए, ये भगवान के बिना हम दुखी, भगवान का भजन ठीक से नहीं होता, इसलिए उसके लिए इतना यद्यपि संभव नहीं है किंतु कुछ तो जरूर होना चाहिए। भक्त विनोद ठाकुर जी कहते हैं गोस्वामियों का बात, जदा जातो गोपी हृदय मदनो नंद सदना मुकुंदो गांधिन्या तनम अनुरुंधन मधुपुरी तदा आख्यान चिंता सरति धन गुरुणा परिचय राधा धायां राधा मयं पयति राधा गणि। करे गोस्वामी वाक्य को करे कि जदा जातो, जब हरि कृष्णचंद्र जी नंद नंदन नंद सदन से, नंद गांव से, नंद भवन से निकल करके मधुपुरी में चले गए, ब्रजछाड़ी गेला मधुपुरी, मधुपुरी वो चले गए, अक्रूर सहित जगे गेला, तबे राधा जी रहिणी घन घूर्णी रंगिणी चिंता जले अगाधे पड़ी जाए। उस समय में अगाथायां बाधा मयम पयसी राधा दिरहिणी, राधा दिरहिणी अगाध विरह के समुद्र में वो डूब गई। इन श्लोकों को याद करके